नमस्कार भारत, 16 फरवरी दिन गुरुवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका अब दो राष्ट्र समाधान की नीति से बंधा नहीं है। समझिए क्या है पूरा मामला।
शांति वार्ता पे जैसे जैसे ठहराव देखने को मिला, उसकी वजह से ये जो इलाके हैं इनमें लगातार एक ग्रोथ होता गया, और इसराइल का ये मानना है कि ये ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ है, आबादी बढ़ी है, इस वजह से बस्तियों का निर्माण करना पड़ा।
अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम जारी। चलिए अयोध्या, जानते हैं क्या हो रहा है वहाँ।
अभी तो 65% काम हो गया है, और अभी ये धीरे धीरे काम चलता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आदेश आ जाएगा और आदमी और बढ़ जाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका अब इस बात पर जोर नहीं देगा कि इसराइल और फलस्तीन के बीच होने वाला कोई भी शांति समझौता दो राष्ट्र समाधान नीति पर आधारित हो। व्हाइट हाउस में इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ साझा संवाददाता सम्मेलन में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि आखिरकार दोनों पक्षों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से संघर्ष का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को समझौता करना पड़ेगा, और उन्होंने इसराइल से अपील की है कि वह कब्जे वाले इलाके में बस्तियों का निर्माण रोक दे। वहीं फलस्तीनी राष्ट्रपति ने दो राष्ट्र समाधान नीति पर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो के सदस्य देशों ने अपनी सुरक्षा के खर्चे को नहीं बढ़ाया तो अमरीका नाटो के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सीमित कर देगा। लेकिन ब्रसेल्स में नाटो के रक्षा मंत्रियों के साथ अपनी पहली बैठक में मैटिस ने कहा कि ये गठबंधन ट्रांस एटलांटिक संबंधों का मूलभूत आधार है। अमरीकी आश्वासन का स्वागत करते हुए नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि नाटो सदस्यों ने वास्तव में पिछले एक साल में अपने खर्च को बढ़ाया है। उन्होंने कहा,
In 2014, we decided to stop the cuts in defense spending, gradually increase.
2014 में हमने रक्षा खर्च में कटौती को बंद करने और एक दशक के भीतर इसे अपनी जीडीपी का 2% तक बढ़ाने का फैसला किया था। हमारी प्रगति अब तक अच्छी रही है। साल 2015 में हमने कटौती को बंद किया। 2016 में 22 गठबंधन सहयोगियों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया। हम सही दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के शब्द। अमरीकी सीनेट ने राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में पारित उस कानून पर रोक लगाने के लिए मतदान किया है जिससे उन लोगों को हथियार खरीदने से रोका जा सकता था जिनकी मानसिक स्थिति खराब है। 5 साल पहले सैंडी हुक प्राथमिक स्कूल में हुई गोलीबारी में 26 बच्चों और कर्मचारियों की मौत के बाद हथियार खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की जांच के नियम को पुख्ता बनाने के लिए ये कानून लाया गया था। इस कानून पर रोक लगाने की पहल पर अमल करना अब राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में है, जो इस पर दस्तखत कर सकते हैं। बांग्लादेश में म्यांमार से भाग कर आए रोहिंग्या शरणार्थियों के बीच मलेशिया से आई हजारों टन सहायता सामग्री बांटी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक कॉक्स बाजार में 15,000 परिवारों को राहत सामग्री मिलेगी, जिसमें चावल, दाल, कॉफी, कंबल और दवाइयां शामिल है। सहायता सामग्री से लदी मलेशिया की जहाज जब म्यांमार में रुकी तो उसे बौद्ध प्रदर्शनकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जहां रोहिंग्या एक अलोकप्रिय मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय है। मलेशिया की राहत दल के प्रमुख हाजी अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि ये और मदद की शुरुआत भर है।
Inshallah, I think after we do this kind of ceremony, 1, 2, 3 camps, and then the main.
मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम और ऐसे एक दो और कैंप के बाद यहाँ मुख्य सामग्री आएगी, और अगले 2 हफ्तों के बाद हम फिर से आएंगे और देखेंगे कि रखाइन प्रांत के लोगों को सभी चीज़ों का वितरण हो रहा है। हम देखेंगे कि लंबे समय में रखाइन प्रांत के अपने भाई बहनों की सहायता हम आगे कैसे कर सकते हैं। अब्दुल रहीम के शब्द। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट का कहना है कि उसने इराक की राजधानी बगदाद में एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। सदर शहर इलाके में यह धमाका किया गया जो एक गरीब घनी आबादी वाला और ख़ास तौर पर शिया मुस्लिम बहुल उपनगर है। इस हमले में गैराज और कार डीलरों से भरे एक व्यस्त सड़क को निशाना बनाया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ, न केवल रेडियो पर बल्कि bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण।
So I'm looking at two state and one state, and I like the one that both parties like. I'm very happy with the one that both parties like. I can live with either one. I thought for a while the two state.
ये आवाज़ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इसराइल और फलस्तीनियों के संघर्ष समाधान के लिए दो राष्ट्र सिद्धांत के संबंध में वर्षों से चली आ रही कठोर अमेरिकी नीति में लचीलेपन का संकेत दिया है। व्हाइट हाउस में इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ साझा संवाददाता सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब दो राष्ट्र समाधान की नीति से बंधा हुआ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस मुद्दे पर और क्या कुछ कहा है बताने के लिए वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय टेलीफोन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जी ब्रजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें?
जी हाँ बिल्कुल संदीप, देखें अमेरिका कई दशकों से टू स्टेट थ्योरी यानी इसराइल और फलस्तीन दो मुल्क आसपास शांति से रहें इस सिद्धांत पर काम करता आया है, उसे बढ़ावा देता आया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन डील मेकर कहलाना पसंद करते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका मकसद है मध्य पूर्व में शांति कायम करना, न कि टू स्टेट या वन स्टेट थ्योरी पर अमल करना। और ये आज की जो ये मुलाकात थी उसके सबसे अहम, आप कह सकते हैं कि टॉप लाइन निकल करके आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मुलाकात के बाद। जानकारों के अनुसार वो ट्रंप एक हल हर हालत में चाहते हैं, ज़रूर चाहते हैं, क्यों, और ये चाहेंगे कि इस मसले का जो हल निकले, कि शांतिपूर्ण हल निकले, उस पर उनका नाम लिखा जाए। तो इसलिए वो कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि किसी तरह किसी न किसी तरह से शांति हासिल हो। जो उन्होंने कहा, इसराइल का जो अति दक्षिणपंथी गुट है उन्हें वो बातें काफ़ी पसंद आएंगी, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र दोनों शामिल हैं, उन्हें ये बात हो सकता है नागवार गुजरी है, क्योंकि ये दलील एक तरह से आप कह सकते हैं एक संप्रभु यानी सोवरेन फलस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ जाती है। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ज़रूर फलस्तीनी पक्ष को अच्छी लगी होगी, यानी जब उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि इसराइल फलस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने के कार्यक्रम पर रोक लगाए, और साथ ही उन्होंने कहा कि शांति के लिए दोनों पक्षों को कुछ समझौते करने होंगे। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी शांतिपूर्ण समझौते के लिए सबसे पहले फलस्तीनियों को एक यहूदी राष्ट्र के वजूद को कबूल करना होगा, वरना अगर टू नेशन थ्योरी पर हम कायम रहे, उनके शब्दों में, तो फिर आज अगर एक फलस्तीनी देश बनता है जो इसराइलियों का वजूद ही नहीं माने, तो फिर शांति कैसे आएगी। कुल मिलाकर नेतन्याहू ट्रंप के संदेश को आप कह सकते हैं कि ओबामा प्रशासन की तुलना में एक बेहद सकारात्मक संदेश के तौर पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने पेश करेंगे, लेकिन यहाँ के जानकार कह रहे हैं कि इससे ज़मीनी जो हालात हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी ये कहना फिलहाल काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
ये थे वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब दो राष्ट्र समाधान की नीति से बंधा नहीं है। क्या है ये दो राष्ट्र की समाधान नीति? चलिए हम आपको बताते हैं। इसराइल और फलस्तीनियों के बीच दशकों से संघर्ष जारी है। इस संघर्ष के समाधान के लिए दोनों पक्ष के नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिस सिद्धांत पर सहमत हुए हैं वो सिद्धांत दो राष्ट्र सिद्धांत कहलाता है, जिसके तहत पश्चिमी किनारे गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलम में वर्ष 1967 की जो संघर्ष विराम रेखा है उससे पहले के क्षेत्र में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होना है। अमेरिका आज से पहले तक इस सिद्धांत को मानता था, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप इससे अलग बात कह रहे हैं। आइए आज दुनिया जहान में इसराइल और फलस्तीनियों के संघर्ष को हम और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
दुनिया जहान।
यूरोप में होलोकास्ट के खत्म होने के बाद 1967 में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों ने इसराइल का रुख किया तो इसराइली बस्तियों ने आकार लेना शुरू किया।
उस जमीन पर जो फलस्तीन की थी। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चले आ रहे विवाद में एक बड़ी भूमिका इन्हीं बस्तियों की है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं।
मध्य पूर्व के जानकार सईद नकवी,
ये एरियल शरोन के जमाने से शुरू हुआ जो वो वहाँ के नेता हुए और तब से ये चीजें बढ़ने लगी बहुत ज्यादा। सेटलमेंट्स कितने बने एरियल शरोन के बाद अब तो मुझे नहीं याद, लेकिन वो बनते चले जा रहे हैं और कोई बहुत ज्यादा प्रेशर इसराइल पे डालने वाला नहीं है। इसराइल जो चाहता है करता है, यहाँ तक कि और इतना कि ओबामा के सर के ऊपर सेल करके जाके उन्होंने कांग्रेस को एड्रेस कर दिया। ये ज्यूइश लॉबी की पावर है अमेरिका के अंदर। भाई ओबामा मना करते रहे, उसके बावजूद नेतन्याहू साहब वहां गए और जाके उन्होंने जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस किया।
इसराइली बस्तियों पर निगाह रखने वाली एजेंसी पीस नाउ के मुताबिक पश्चिमी तट पर कुल 131 बस्तियों में करीब 3,80,000 से ज्यादा यहूदी रहते हैं। इनमें से 97 बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें बिना आधिकारिक मंजूरी के बनाया गया। पश्चिमी तट पूर्वी यरूशलम और गोलन पहाड़ियों पर बनाई गई इन बस्तियों ने शांति की कोशिशों को कभी परवान चढ़ने नहीं दिया। यरूशलम में भारतीय पत्रकार हरिंदर मिश्रा,
पश्चिम तट जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से इसराइल के नियंत्रण में है, एक हिस्सा जो है वो फिलिस्तीनी प्रशासन के पूरी तरह से नियंत्रण में है और बीच का कुछ हिस्सा है जिसमें दोनों का ही नियंत्रण है। जो इसराइल के नियंत्रण का जो इलाका है वहीं पर ये सारी बस्तियां बनी हैं। दरअसल ये विवादास्पद ही इसको हिस्सा माना जाता है।
इसराइल ने ये बस्तियां अपनी सीमा से लगते मिस्र, जॉर्डन और सीरिया की जमीन पर भी बसाई थी, लेकिन बाद के वर्षों में इन्हें हटा लिया गया। 1993 में जब दोनों देशों के नेताओं ने शांति की दिशा में बड़े कदम उठाए और एक दूसरे की सरकारों से सफल बातचीत की तो ये उम्मीद बंद ही थी। इसराइल ने फिलिस्तीनी सरकार को मान्यता दी। ओस्लो में हुए शांति समझौते में ये भी तय हुआ कि इन बस्तियों का मुद्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि अंतिम समझौता नहीं हो जाता। नेताओं को इन कोशिशों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार तो मिल गया, लेकिन शांति को इस इलाके का पता नहीं मिल सका। अलबत्ता इस इलाके में बस्तियों का दायरा और जरूर बढ़ गया।
1993 में जो समझौता हुआ उसमें ये तय किया गया था कि धीरे धीरे जो है इसका हल निकाला जाएगा। ये जो इलाके हैं जब फिलिस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होगा तो फिर को लेकर के कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन हुआ यह है कि शांति वार्ता पे जैसे जैसे ठहराव देखने को मिला उसकी वजह से ये जो इलाके हैं इनमें लगातार एक ग्रोथ होता गया और इसराइल का ये मानना है कि ये ग्रोथ जो है वो नेचुरल ग्रोथ है, आबादी बढ़ी है, इस वजह से बस्तियों का निर्माण करना पड़ा।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया भर में जो आशंकाओं की आंधी उठी है उससे इसराइल फिलिस्तीन की जमीन भी अछूती नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो चुनाव अभियान के दौरान ही इसराइली दूतावास को तेल अबीब से यरूशलम ले जाने की बात कह दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने राजदूत भी ऐसे शख्स को नियुक्त किया है जो बस्तियों के बारे में इसराइल की नीति के समर्थक हैं। शायद यही वजह है कि ट्रंप के सत्ता में आते ही इसराइल ने ढेर सारी बस्तियों को बनाने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी। हालांकि जानकार मानते हैं कि जितनी बातें अमरीकी राष्ट्रपति ने कही हैं उन्हें पूरा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। इसराइल में बीते कुछ सालों से दक्षिणपंथी पार्टियों का बोलबाला है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में भी उग्रपंथी गुट हमास मजबूत होने के साथ ही अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। संसदीय चुनाव में भी हमास ने अपनी बढ़त बना ली है और अब याहिया सिनवार के रूप में उसके पास ऐसा नेता है जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं। शांति और समझौतों की बात करने वाली PLA यानी फिलिस्तीन लिबरेशन अथॉरिटी थोड़ी नेपथ्य में चली गई है, तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि शांति के बारे में चर्चा हो? हरिंदर मिश्रा,
गजा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसराइल के नियंत्रण में था, जो कि इसराइल ने उसको खाली कर दिया और वो भी तब जबकि यहाँ पर दक्षिणपंथी सरकार थी। आरियल शरोन जो हैं वो कि बड़े ही हॉकिश प्रधानमंत्री माने जाते थे, उनके नेतृत्व में उसे खाली कर दिया गया। तो ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन फर्क ये है कि वहां पर आबादी बहुत कम थी। गजा का जो जिस हिस्से जिन बस्तियों की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर तकरीबन 10,000 लोग ही रह रहे थे, जबकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तकरीबन 5,00,000 लोग जो हैं वो इन बस्तियों में रह रहे हैं। और ऐसे में अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनको वहां से निकाल पाना आसान नहीं होगा।
अरब इसराइल के विवाद की चर्चा करते करते पत्रकारों की कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इसका समाधान तो दूर, इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। नेता बदल जाते हैं, संगठन बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, यहां तक कि नीतियां भी पलट जाती हैं, लेकिन नहीं बदलती है तो यहां की स्थिति जो हर गुजरते दिन के साथ और जटिल होती जा रही है। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आज है 16 फरवरी दिन गुरुवार। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में इस समय वक्त हुआ है सुबह के 6:45 और ये 46 मिनट। और आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां प्रस्तावित राम मंदिर की कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम जारी है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने इस कार्यशाला में एक पूरा दिन बिताया और समझने की कोशिश की वहाँ आखिर हो क्या रहा है।
पाँव फटने को है। एक बड़े हाथे में दो लोग नारंगी कपड़े से ढके एक बक्से को किसी कोठरी से निकाल रहे हैं। कपड़ा हटने पर पता चला कि दरअसल ये एक दान पात्र है। इसे रात को चोरों के डर से लॉक कर दिया जाता है। दान पात्र सहेजने वालों में यहाँ के एक सुरक्षा कर्मी हनुमान यादव भी हैं। 3000 रुपए की सैलरी मिलती है हर महीने और 20 वर्षों से यही कर रहे हैं।
हम चोरी करने की कोशिश किए थे लेकिन भगवान का ऐसा दया था, बच गया। मॉडल के जाली वाले काट के काट दिए थे, ला भगवान की दया से कोई नुकसान क्षति कोई नहीं पहुंची, दान पेटी ले नहीं गए।
घड़ी में 7 बज चुके हैं। बाहर गेट पर 5 टेम्पो गहरा काला धुआं उगलते हुए रुके हैं। आपस में एक दूसरे को कोहनी मारते 2 दर्जन महिला पुरुष भीतर दाखिल होते हैं। होड़ शीशे में रखे एक ढांचे को करीब से छूने की है। किसी ने माथा टेका, किसी ने 100 का पत्ता चढ़ाया और किसी ने सेल्फी ले डाली। अयोध्या के बीचों बीच ये मंजर है राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला का, जहां 1992 से पत्थरों को तराशने का काम जारी है। जिस ढांचे को देखने की होड़ है वो है प्रस्तावित राम मंदिर का ढांचा। बगल एक पत्थर पर लिखा है कि इसकी लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट होगी। पिछले करीब 24 वर्षों से इस तरह के पत्थर राजस्थान के भरतपुर से यहाँ लाए गए हैं। इन दिनों काम में जो 2 प्रमुख शिल्पकार हैं वे दोनों गुजरात के हैं। 1992 में जब विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था, उसके बाद से गिरीश भाई सोमपुरा परिवार के साथ यहाँ पहुँच गए थे। गिरीश भाई की तनख्वाह 12,000 रुपये है। 2 बेटियों और बेटी की शादी हो चुकी है और वे सभी गुजरात लौट चुके हैं सिवाय इनके। गिरीश भाई ने बताया कि अब तक करीब 1,25,000 स्क्वायर फुट पत्थर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी पत्थरों की कमी है और करीब 75,000 स्क्वायर फुट पत्थरों की और ज़रूरत है।
अभी तो 65% काम हो गया है और अभी ये धीरे धीरे काम चलता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब आदेश आ जाएगा और आदमी और बढ़ जाएंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा।
करीब 25,000 स्क्वायर फुट में फैली इस कार्यशाला में इन दिनों 20 लोग रहते हैं। हाथे में मंडराने वाले बंदरों की गिनती नामुमकिन है। दोपहर हो चुकी है। इस कार्यशाला को देखने के लिए अब तक 200 से ज्यादा लोग आकर लौट चुके हैं। हम 2.5 बोतल पानी पी चुके हैं और तमाम चाय। पहली खेप महाराष्ट्र के शोलापुर और पुणे की थी। श्रीकांत फडणवीस को सुनिए।
यहाँ जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, 21 स्थिति में है, ये देखने के लिए हम यहाँ मौजूद है। और हमारे राम जी के ऊपर जो श्रद्धा है रामलला के ऊपर, इसके वजह से हम सोनापुर महाराष्ट्र के दूर से यहाँ आ गए।
उधर पुणे की अरुंधति कुलकर्णी को लगा कि मामला अपनी अपनी आस्था का है, आखिर इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो।
जहाँ राम मंदिर है वो देखने के लिए भी आई है, वो पहला कैसा था वो तो मालूम नहीं। सब बोलते हैं वीट कहाँ है, वीट कहाँ है, सबने भेजे है, लेकिन ये देखने के लिए यहाँ तो बहुत सारी वीट है। पूछने वाले जहाँ से पूछ रहे हो यहाँ आके देख लेना, उनको भी पता चलेगा कि राम मंदिर का काम कैसा चल रहा है। बनेगा, राम मंदिर बनेगा, देर लगती है लेकिन बनेगा।
आधे घंटे बाद ही एक छोटी टेम्पो ट्रैवलर रुकी और नेपाल से राम लला का दर्शन करने आए लोग हाथ जोड़े दाखिल हुए। काठमांडू की रहने वाली राधा थोड़ी निराश भी दिखी।
बनना तो चाहिए जी, लगता जरूर बनेगा, निराशा तो बन नहीं रहा, इसलिए देरी हो रही है बनने के लिए, इसलिए बनना चाहिए, बहुत खुशी हो रही।
वो बात और है कि राधा को किसी ने ये नहीं बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में विवादित स्थल को तीन पार्टियों में बांटा था। इनमें से एक निर्मोही अखाड़ा है, दूसरा राम जन्मभूमि न्यास यानी विश्व हिंदू परिषद और तीसरा सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सभी को फैसले का इंतजार है, लेकिन कार्यशाला में दर्शालुओं का जमावड़ा दोपहर बाद बढ़ने लगा है। कार्यशाला प्रभारी स्वदेश जी तेजी से चंदा देने वालों को रसीद काट कर दे रहे हैं।
यहाँ पत्थर तराशी का काम होता है, फिर यहाँ हम बैठे रहते हैं, जो राम भक्त आते हैं, जो दानदाता आते हैं, अगर मंदिर में कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो उनको मैं रसीद देता है, चला जाता है उससे, ये मंदिर के पत्थर के निर्माण में जो भी खर्च व्यय आता है उससे खर्च होता है।
जम्मू से करीब 14 लोगों का ग्रुप सुबह पहुंचा है। कनक भवन और सरयू में डुबकी लगाने के बाद अब कार्यशाला का समय है। कुछ लोग दान पात्र में चढ़ाते हैं, कुछ बंदरों के खौफ से नोट मुट्ठी में दबाए परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ पत्थरों पर स्केच पेनों से अपना अपना नाम पता भी लिख रहे हैं। चूंकि चुनाव सिर पर है इसलिए तमाम को मामले की राजनीति भी पसंद थी। मथुरा से आए गोवर्धन शर्मा।
देखो राजनीति का तो उल्टा ही हिसाब है जी, राजनीति का धर्म के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। राजनीति तो अपने स्वार्थ के लिए जो मर्जी बोल सकती है, कोई भी पार्टी बोल सकती है, कोई विरोध भी कर सकता है उसका और कोई समर्थन भी कर सकता है।
दो बज चुके हैं, कार्यशाला के कर्मचारी अब थोड़ी हड़बड़ाहट में है। पास ही में कार सेवकपुरा है जहाँ रोज लंगर चलता है। कार्यशाला में पत्थर तराशने और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तो चलता रहेगा, लंगर का समय किसी का इंतजार नहीं करता, बंद हुआ तो अगले दिन ही खुलेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC अयोध्या।
कार्यक्रम में आगे समाचार पत्रों की सुर्खियां, लेकिन पहले बात झारखंड की, जहां राज्य सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रही है, लेकिन झारखंड के आदिवासी अपनी जमीन हाथ से निकलने के डर से इस आयोजन का विरोध कर रहे हैं। रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
अभी आप झारखंड की राजधानी रांची में आए हैं तो आकर्षक सजावट, सैकड़ों होर्डिंग्स, चकाचक सड़कें, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस को देखते ही समझ जाएंगे कि वाकई औद्योगिक घरानों को रिझाने के लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछाए हैं। बुधवार की रात मुख्यमंत्री ने देश दुनिया के 150 उद्यमियों के स्वागत में रात्रि भोज का भी आयोजन किया। उधर गांवों कस्बों में आदिवासियों की गोलबंदी तेज है, वे लोग जमीन नहीं देना चाहते। दर्जन भर आदिवासी संगठनों ने रांची में इन्वेस्टर ग्लोबल मीट का विरोध किया है। सरकार का आकलन है कि इस आयोजन के साथ राज्य में 4 लाख करोड़ के पूंजी निवेश होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मीडिया से कहा है कि झारखंड तेजी से विकास के रास्ते बढ़ रहा है।
मुझे खुशी है कि 2 वर्ष के अंदर एक टीम झारखंड के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ही 2 वर्ष के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल समिट करना ये बहुत बड़ा किसी भी राज्य के लिए अचीवमेंट है।
आदिवासी समुदाय को इन बातों पर यकीन नहीं। सनीराम मुंडा क्षेत्रीय भाषा में इसकी हुंकार भरते हैं कि झारखंड में बड़ी कंपनियों को बुलाकर चारागाह बनाने की कोशिशें हो रही है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सरीखे नेता भी इन्वेस्टर मीट का विरोध कर रहे हैं। हालांकि राज्य के विकास पर पैनी नजर रखने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर हरीश्वर दयाल कहते हैं कि सरकार को इमेज बिल्डअप करने में सफलता मिलेगी।
वेस्ट बंगाल ने इन्वेस्टर्स मीट किया, बिहार ने 2 बार ऐसा कर चुका है, ग्लोबल मीट कराया है, जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं इमेज बिल्डिंग का भी रहा। झारखंड को और भी ज्यादा जरूरत है।
तब आदिवासी उद्योलित क्यों है? इस सवाल पर सरना सभा के लक्ष्मी मुंडा कहते हैं,
सरकार जो कह रही है ये पूंजी आएगी, तकनीक आएगी, रोजगार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम लोग इसका हम पहले देख चुके हैं और जितने भी ज्यादा कंपनियां आएंगी उतना ही यहाँ पर जमीन का लूट होगा, यहाँ के लोग बेदखल हो जाएंगे।
गौरतलब है कि आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा को लेकर यहाँ अंग्रेज जमाने में बने 2 मजबूत कानून संताल परगना तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव से आदिवासी पहले से ही उबाल खाते रहे हैं। अब कॉरपोरेट घरानों से सरकार की नजदीकी ने मानो उनकी दुखती रगों को छेड़ दिया है। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
और आइए अब एक नजर डालते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों की सुर्खियों पर, अमर शर्मा के साथ।
जी शशिकला, आज तीसरे दिन सभी अखबारों की पहले पन्ने की सुर्खी बनी हुई है। उन्होंने कल सजा मिलने के बाद बेंगलुरु में सरेंडर कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने दोनों भतीजों टीटीवी दिनाकरण और एस वेंकटेश को एआईडीएमके पार्टी में दोबारा शामिल कर दिया, जिन्हें जयललिता ने निकाल दिया था। और दिनाकरण को तो उन्होंने उप महासचिव बना दिया है, जो अब उनकी जगह वही फैसले लेंगे। और आज राजभवन में नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, ऐसी संभावना है। आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इसरो भी आज सभी अखबारों की पहली सुर्खी बना है कि इसरो ने इतिहास रचा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी यही खबर है कि इसरो मेक्स हिस्ट्री। इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक बड़ी सी तस्वीर लगाकर कि रॉकेट पीएसएलवी आसमान की ओर चीरता हुआ आसमान की ओर बढ़ रहा है, और उन्होंने जो 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर जो इसरो ने इतिहास रचा है, ये लगभग पहली हेडलाइन है सभी की। ये आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून में, उनकी एक बड़ी सी तस्वीर छपी है कि वो प्रदेश में वोटिंग से पहले प्रणाम कर रहे हैं और वो सामने भगवान की तस्वीर है, मतलब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हों कल उनकी पार्टी के पक्ष में उनके पक्ष में वोट आए। और उसके नीचे शहाबुद्दीन की खबर आप देख सकते हैं, शहाबुद्दीन की तस्वीर के साथ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सामाजिक माने समाज के हित में है कि आप शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ में शिफ्ट कर दें, क्योंकि वे बहुत प्रभावित कर रहे हैं वहाँ के कानून व्यवस्था को जेल में रहते हुए। सेना प्रमुख ने कहा है कि वैली में, मतलब कश्मीर घाटी में, मतलब इस खबर को भी लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है कि से वहाँ पर जो नौजवान है, मतलब सेना प्रमुख ने एक सलाह दिया है कि जो आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराएगा उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी सेना।
बहुत शुक्रिया समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। और अब खेल समाचार।
बीबीसी खेल समाचारों के साथ मैं हूं वैभव दीवान। भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम कल से मुंबई के बर्नबो स्टेडियम में इंडिया ए के खिलाफ अभ्यास मैच में उतरेगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत आने से पहले दुबई की पिचों पर अभ्यास करके आई है, और साथ ही भारत में स्पिन गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर की मदद ली है। क्या ये तैयारी ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के काम आएगी? बीबीसी ने जानी ये बात भारतीय पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा से।
देखिए थोड़ी काम तो आएगी, जो कि कोशिश की होगी, और दुबई में तो बड़ा अच्छा वैसे एक्चुअली जो आईसीसी का जो उन्होंने अपना जगह बनाई है, प्रैक्टिस फैसिलिटी बनाई है, बड़ी मज़ेदार है। उसमें कुछ 6-8 पिचेज हैं अलग अलग। अगर आपको कैरेबियन की पिच पे खेलना है तो वो खेल सकते हैं आप, एशियन पिच पे खेल सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलियन पिच पे खेल सकते हैं। इंग्लैंड की पिचेज भी वहाँ पर बनाई हुई हैं जिनका बर्ताव बिल्कुल बेहतर रहता है, तो उन्होंने प्रैक्टिस वहाँ की है, अच्छी बात। उन्होंने एज ए टेस्ट से भी खेला, जो हमारी गेंद रहती है उससे भी अपने आप को रूबरू कराने की कोशिश की है, तो एक वो भी अच्छी बात। तो ये सब मिलकर इनको कम्पिटिटिव बना देगा।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 23 फरवरी से शुरू होगी। कल होगा अभ्यास मैच इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी स्ट्राइकर सुनील छेत्री आई लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री का ये आई लीग में 90वां गोल था, और इस तरह उन्होंने पूर्व कप्तान बाईचंग भूटिया का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने एनएफएल और आई लीग में कुल मिलाकर 89 गोल किए थे। बीबीसी खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
क्या आप जानते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का सफर बैलगाड़ी से शुरू हुआ और धीरे धीरे वो किस तरह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस मुकाम पर जा पहुंचा जहां भारत ने 104 उपग्रह अंतरिक्ष में एक साथ भेजे? ये एक खबर है bbchindi.com के पहले पन्ने पर। छोटे छोटे सपनों से कैसे बड़ा बना इसरो, आप विस्तार से आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका अब इस बात पर जोर नहीं देगा कि इसराइल और फलस्तीन के बीच होने वाला कोई भी शांति समझौता दो राष्ट्र समाधान नीति पर आधारित हो। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने चेतावनी दी है कि अगर नाटो के सदस्य देश अपनी सुरक्षा के खर्च को नहीं बढ़ाते हैं तो अमरीका नाटो के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सीमित कर सकता है। बांग्लादेश में म्यांमार से भागकर आए रोहिंग्या शरणार्थियों के बीच मलेशिया से आई हजारों टन सहायता सामग्री बांटी जा रही है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। हमारा अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com है आपके साथ। संदीप सोनी को समस्त सहयोगियों के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।